मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सुलेमान शहजाद है और मैं 2018 से मुल्क फ्रांस में मुकीम हूँ। मैं रिफॉर्मेशन इंटरनेशनल सेमिनरी फ्लोरिडा अमेरिका से मास्टर ऑफ डिविनिटी का तालिब इल्म हूँ और एक्सपोजिटरी पॉडकास्ट शुरू करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि खुदा के लोग खालस बिब्लिकल तालीम हासिल करें और ईमान में बढ़ें ताकि अपनी फैमिलीज़ को, अपने घरानों को खुदा की बादशाहत के लिए रास्ती से रहनुमाई कर सकें। एक्सपोजिटरी तालीम का मतलब यह है कि बाइबल को उसके सियाको सबाक में समझना और उसके मफहूम को बयान करना जैसा कि बाइबल में मौजूद है, उसमें किसी चीज़ की कोई एडिशन न करना, ताकि खुदा के कलाम को सही मफहूम में समझते हुए उसके कलाम के मुताबिक उसके लोगों की तरह इस ज़मीन पर हम जिंदगी गुजारें। आज हमारी एक्सपोजिटरी उर्दू हिंदी पैगाम रूह की बेदारी का आगाज़ है, जिसमें हम खुदा ने चाहा तो तकरीबन नए दिनामे की सारी किताबों पर तफसीली मुतालिया करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 1 से 17 आयत तक हम पढ़ें। खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है, हम ये देखेंगे और ये देखेंगे कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में किस कदर मुफीद है और हमें जो मैसेज दिया जाता है उसका हमारी जिंदगियों में क्या मकसद है। मैं बहुत खुश हूँ कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी और ये मौका बख्शा कि हम उसके कलाम को पढ़ें, समझें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील निकालिए और उसके पहले बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करूँगा। यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्राहिम का नसब नामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और जारा तमर से पैदा हुए और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमिनदाब पैदा हुआ और अमिनदाब से नसहून पैदा हुआ और नसहून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोएज राब से पैदा हुआ और बोएज से ओबेद रूथ से पैदा हुआ और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ओरिया की बीवी थी और सुलेमान से रोजाम पैदा हुआ, रोजाम से अबाया पैदा हुआ और अबाया से आसा पैदा हुआ और आसा से यहोशफत पैदा हुआ और यहोशफत से योराम पैदा हुआ और योराम से उज़रिया पैदा हुआ और उज़ाया से योताम पैदा हुआ और योताम से अखज़ पैदा हुआ और अखज़ से हिज़किया पैदा हुआ और हिज़किया से मनस्सी पैदा हुआ और मनस्सी से आमून पैदा हुआ और आमून से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के ज़माना में यूसिया से यकूनिया और उसके भाई पैदा हुए और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद यकूनिया से सियालतीएल पैदा हुआ और सियालतीएल से जुरबाबुल पैदा हुआ और जुरबाबुल से अबियूद पैदा हुआ और अबियूद से अलियाकीम पैदा हुआ और अलियाकीम से आजवर पैदा हुआ और आजवर से सदूक पैदा हुआ और सदूक से अखीम पैदा हुआ और अखीम से अलियूद पैदा हुआ और अलियूद से अलियजर पैदा हुआ और अलियजर से मतान पैदा हुआ और मतान से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शोहर था जिससे यस्सु मसीह हुआ जो मसीह कहलाता है। आमीन। ये आपने जो सिना सिर्फ एक नामों की फहरिस्त नहीं है बल्कि ये इस्लाही रहनुमाई और गवाही के लिए रूल कुद्दस से मुतासर नामों की फहरिस्त है जो खुदा बाप की तरफ से यस्सु मसीह के नसब नामा के लिए मुकर्रर हुई। ये सारे नाम जो हमने पढ़े हैं किसी इंसानी मर्जी या इत्तफाक का नतीजा नहीं है बल्कि सबको इस खास मकसद के लिए पैदा किया गया कि वो मसीह यस्सु की जिस्मानी पैदाइश का जरिया बने। बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा बेहद खुशी और मुसर्रत पर मुश्तमिल है क्योंकि यह मत्ती रसूल के मुताबिक यस्सु मसीह के नसब नामा को बयान करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि आज के इस पैगाम के लिए जो खुदा का कलाम हमने पढ़ा है, इसके लिए दुआ करें कि खुदा हमारी जिंदगियों पर इस कलाम को बड़ा फलदार साबित करे। खुदावन, जैसा कि हमने आज तेरे कलाम को पढ़ा, हमें यह तौफीक बख्श कि हम इसे समझें और ये हमारी जिंदगी में फलदार साबित हो। खुदावन, जितने आज तेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है कि तेरा कलाम इनके दिलों को छुए और तेरा रूह इनकी जिंदगी बदले और ये बहुत सारा फल लाने और दुनिया के आखिर तक तेरे सच्चे और हकीकी गवाह बनकर जिंदगी गुजारें। हम ये सब कुछ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम हकीकी तौर पर नहीं जानते कि ये अंजील किसने लिखी, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन चर्च की तारीख और रवायात हमें बताती हैं कि ये मुकद्दस मत्ती रसूल ने लिखी, जो यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक था, जिसे मत्ती मसूल लेने वाला भी कहा जाता है। उसने पाकरू से इल्हामी अल्फाज को कलम बंद किया। मत्ती रसूल को यीशु मसीह के नसब नामे की तहरीर के लिए चुना गया, जैसा कि उसका नाम और काम भी था कि मसूल लेने की गर्ज से लोगों के खानदानों की तफसील अपने रजिस्टर्ड में कलम बंद रखे। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था और समझा जाता है कि उस दौर की 2 से 3 मुख्तलिफ जुबानें भी बोल सकता था। ये किताब अंजील के उलमा के लिए एक खास तनकीद का मरकज भी रह चुकी है और बहुत तनकीद और गहरे मुतालिया के बाद इस किताब को एक अजीम अंजील का एजाज हासिल है। आज हम इस फहरिस्त पर गौर करेंगे जो मुकद्दस मत्ती रसूल ने यस्सु मसीह के नसब नामा के बारे में हमें लिखी है। इसे हम यस्सु मसीह के अबाव अजदाद की फहरिस्त या नसब नामा भी कहते हैं। ये एक यहूदी ने खास तौर पर यहूदियों के लिए लिखी है, जिसका बुनियादी मकसद यहूदियों को यह बताना है कि यस्सु ही खुदावंत है, यस्सु ही मसीह है। और ये नाम मसीह यस्सु मसीह का नाम नहीं है, बल्कि उसका लकब है, जिसका मतलब है यस्सु मसा किया हुआ। यस्सु नासरी वो मसीहा है जिनका वादा खुदा बाप ने नबियों के जरिए पुराने हदनामे में किया। मत्ती रसूल ने यस्सु को इब्ने दाऊद के लकब से भी बयान किया है, जो बाकी तमाम अनाजील की निस्बत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसका मकसद यहूदियों को यह बताना था कि यस्सु ही वो वाहिद मसीहा है जिसका जिक्र पुराने दनामा में यहूदियों को खुदावंद ने नबियों के जरिए बयान किया, और यहूदियों का ईमान है कि मसीह दाऊद की नस्ल से आएगा। इसीलिए मत्ती रसूल ने अपनी अंजील की इब्तिदा ही इस बयान से की कि यस्सु मसीह दाऊद के घराने में पैदा हुए। हम थोड़ी देर में इस अंजील का दूसरी अनाजील खसूसन मुकद्दस लुका की अंजील के साथ मुआजना करेंगे, क्योंकि लुका ने भी यस्सु मसीह के नसब नामे को तहरीर किया है। हम ये यकीन रखते हैं कि बाइबल में कोई गलती या तजाद नहीं है, लेकिन बज़ाहर मत्ती और लुका के लिखे हुए नसब नामा में तजाद नजर आता है। आज हम तफसील से देखेंगे कि आया ये वाकई तजाद है या हमारे समझने में कोई कमी है जिसे हम तजाद समझ कर बैठे हैं। तो पहला फर्क जो मैं बयान करना चाहता हूं यहां यह है कि मुकद्दस लुका की अंजील में रसूल यस्सु मसीह के नसब नामे को आदम से शुरू करता है, ताकि दिखा सके कि यस्सु नासरी ना सिर्फ यहूदियों के बल्कि पूरी इंसानियत के निजात दहिंदा बनकर आए। वो आखिरी आदम कहलाए, जिसके बारे में खुदा ने बागे अदन में पहले ही पेशन गोई की थी कि वो औरत की नस्ल से आएगा और अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाएगा। लुका रसूल के नसब नामे में यह बात वाजिया है, लेकिन मत्ती रसूल यस्सु मसीह के नसब नामे को अब्राहम से शुरू करता है, क्योंकि उनका मकसद यहूदियों को दिखाना है कि यस्सु नासरी इब्राहम की नस्ल से दाऊद का फर्जंद और मसीह बनकर यहूदी कौम में पैदा हुआ। यह नसब नामा यहूदियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यह साबित करता है कि यस्सु वही मसीहा है जिसका वादा नबियों ने किया था। नसबनामा ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए भी खास तवज्जो का मरकज है। बहुत से लोग यीशु मसीह के नसबनामे को सिर्फ एक आम फहरिस्त समझते हैं जिसमें चंद नामों का जिक्र है, और अक्सर लोग मत्ती रसूल के नसबनामे को सही तरह नहीं पढ़ते या तवज्जो से नहीं बयान करते। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह के नसबनामे को बयान ना करने से बहुत से लोग इस हकीकत से नावाकिफ रह जाते हैं कि आया यीशु मसीह वाकई एक हकीकी इंसान के तौर पर दुनिया में आए थे और अपनी 33.5 साल जिंदगी गुजारी, और इनका नसबनामा इनके खानदान और कौमियत को वाजिया तौर पर बयान करता है कि वो कौन थे और उनका ताल्लुक किस कबीले, किस खानदान और किस कौम से था। एक बार का जिक्र है कि एक मिशनरी औरत थी जो अमेरिका के एक बाइबल कॉलेज में, बाइबल कॉलेज की तलबा थी, और उस अदारे ने जहाँ की वो तलबा थी उन्हें एक अफ्रीका के कबीला में भेजा कि वहाँ पर अपनी मिशनरी सरगर्मियाँ जो हैं, अपने मिशनरी काम जो हैं वहाँ पर जाकर करे। और वो औरत उस कबीला में गई और उस कबीला की ज़ुबान का तर्जमा करने के लिए जहाँ वो रहती थी, क्योंकि अब तक इस कबीला में बाइबल का कोई तर्जमा मौजूद ना था। इस मिशनरी खातून ने पहले इनकी ज़ुबान सीखी और फिर बाइबल का नया अहदनामा इनकी ज़ुबान में तर्जमा किया, लेकिन यीशु मसीह के नसबनामे को शामिल नहीं किया। 10 साल बाद जब इस तर्जमे का दूसरा एडिशन, दूसरा नुस्खा तैयार किया गया, तो इसमें यीशु मसीह के नसबनामे को शामिल किया गया, और इस कबीला के सरदार ने यीशु मसीह के नसबनामे को पढ़कर इस मिशनरी औरत को अपने पास बुलाया और इसे पूछा कि क्या ये यीशु मसीह जिसका जिक्र तुमने किया है वाकई दुनिया में मौजूद था? मिशनरी खातून ने जब यीशु मसीह के नसबनामे की वजाहत की तो ना सिर्फ वो सरदार बल्कि पूरा कबीला यीशु मसीह पर ईमान ले आया और निजात पा गया, क्योंकि वो जान गए कि खुदा ने हकीकत में इंसान का रूप धारा ताकि हमें हमारे गुनाहों से निजात दे सके। हम देखते हैं कि यही वजह है कि हमें यीशु मसीह के नसबनामे को ना सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि तफसीली तौर पर उस पर सोचना चाहिए, उसकी रिसर्च करनी चाहिए और अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अपने अजीज़ों को, सबको बताना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है कि यीशु मसीह के नसबनामे को अच्छे तरीके से जानें। आगे हम देखते हैं कि मत्ती रसूल ने यीशु मसीह के नसबनामे को 3 हिस्सों में तकसीम किया है और हर हिस्से में 14 नाम शामिल हैं। इस तकसीम के पीछे क्या राज है? ये सवाल बाइबल के उल्मा के लिए एक मुश्किल मरहला बन गया है, और इवन के 14 इसके पीछे का राज के 14 के अदद का क्या मतलब है? अगर आप इब्रानी जुबान में अदाद की अहमियत पर गौर करेंगे तो आप जानेंगे कि 14 का अदद दाऊद बादशाह का अदद है। मत्ती रसूल ने यीशु के नसबनामे को 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में 14 नामों में तकसीम करके ये साबित करने की कोशिश की है कि यीशु मसीह दाऊद के बेटे हैं और उनके तख्त के वारिस हैं। दूसरा फर्क यह है कि मत्ती रसूल बयान करता है कि यूसुफ का बाप याकूब था, जबकि अगर आप मुकद्दस लूका रसूल की अंजील देखें तो वो बयान करता है कि यूसुफ एली के खानदान से था। जब आप दोनों नसब नामों का मुतालिया करते हैं तो आप जानते हैं कि दोनों रसूलों ने चंद खास नामों का इंतखाब किया जो बज़ाहर एक दूसरे से मुख्तलिफ लगते हैं, मगर वाजिया फ़र्क यह है कि मत्ती रसूल की फहरिस्त में यूसुफ के नसब नामे को दाऊद बादशाह से सुलेमान बादशाह तक बयान किया गया है, जबकि लूका रसूल की फहरिस्त में दाऊद बादशाह से नातन का जिक्र किया गया है। अब सुलेमान और नातन दोनों दाऊद बादशाह के बेटे थे। दाऊद का बड़ा बेटा नातन था, ना कि सुलेमान, लेकिन बादशाहत दाऊद के बेटे नातन की बजाय सुलेमान को दी गई। अब आप सोचेंगे कि इस सारे का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामे से क्या है? देखिए, बाइबल के उल्मा का ये मानना है कि मत्ती रसूल के बयान करदा नसबनामे में बादशाहों की फहरिस्त दी गई है। जैसा कि आप जब देखते हैं कि याकूब के बेटे का जिक्र आता है, तो पहलोठे की बजाय यहूदा का जिक्र किया गया है। यही यहूदा का कबीला जिसे खुदा की तरफ से बादशाहत मिली। चुनाचा मत्ती रसूल के बयान करदा नसबनामे में हमें बादशाहों की फहरिस्त मिलती है, जबकि लूका रसूल के बयान करदा नसबनामे में बादशाहों की फहरिस्त नहीं बल्कि नातन के औलाद की फहरिस्त दी गई है, जिसे जब हम देखते हैं कि जिसमें यूसुफ का जिक्र भी मिलता है। बाइबल के उल्मा और मुकद्दस क्लीसिया का ये मानना है कि मत्ती रसूल यस्सु के नसबनामा को मुकद्दस यूसुफ के जरिए बयान करता है, जबकि लुका रसूल यस्सु मसीह के नसबनामा को मुकद्दसा मरियम के जरिए बयान करता है, क्योंकि पाक सहीफे वाजिया तौर पर बयान करते हैं कि मुकद्दसा मरियम भी दाऊद बादशाह की नस्ल से थी और यस्सु मसीह ने अपनी जिस्मानी फितरत मुकद्दसा मरियम से ली थी, ना कि मुकद्दस यूसुफ से। अगरचा यूसुफ यस्सु मसीह का हकीकी जिस्मानी बाप ना था, क्योंकि हम जानते हैं कि यस्सु नासरी बगैर किसी जिस्मानी बाप के पैदा हुए, लेकिन फिर भी यहूदी कवानीन और शरीयत के मुताबिक यूसुफ जो यस्सु नासरी का सुतेला बाप था, उनके नसब नामे को जानना यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता था। अब सवाल यह है कि क्या लूका रसूल बयान करते हैं कि यूसुफ यानी यस्सु मसीह के सुतेला बाप यूसुफ एली के खानदान से था, जबकि मत्ती रसूल बयान करता है कि यूसुफ याकूब का बेटा था। ऐसा क्यों है? अब जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बेशक यूसुफ के दो वालद बिल्कुल नहीं थे और ना ही खुदा का कलाम ये बताने की हमें कोशिश कर रहा है, बल्कि यहां ये बात समझाई जा रही है कि मत्ती रसूल हमें बताते हैं कि यूसुफ याकूब का बेटा था, जबकि मुकद्दसा मरियम से ताल्लुक के सबब से एली के खानदान का हिस्सा भी था। मुख्तसरन ये कि यूसुफ जिस्मानी तौर पर यहूदा के कबीला से था, जबकि मरियम जिस्मानी तौर पर याकूब के खानदान से थी और दोनों आपस में रिश्तेदार थे। आखिर में हमें एक बहुत अहम बात बताई जाती है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि मत्ती रसूल के बयान करदा नसब नामे में चार औरतों का जिक्र है, और हैरान कुन बात यह है कि ये चारों औरतें यहूदी नहीं थीं। इनमें सबसे खास रूत का करैक्टर है जो दाऊद बादशाह की दादी थी। हम इस बात को खुदा के वादा के साथ देखते हैं कि जब खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि तुम्हारी नस्ल के जरिए दुनिया की तमाम कौमें बरकत पाएंगी, तो ये वादा इस कबीला के जरिए यानी रूथ के जरिए हम तक पहुंचता है, और हम देखते हैं कि खुदा ने वाकई अपने इस वादा को पूरा किया जो उसने इब्राहिम से किया कि तेरी नस्ल की वजह से, तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की तमाम कौमें जो हैं वो बरकत पाएंगी। और हम देखते हैं कि गैर यहूदी औरतें भी खुदा की इस मेज में, खुदा के इस कवनेंट में, उसके अहद में शामिल की जाती हैं और खुदा उनको इब्राहिम के वसीला से बरकत देता है। और एक और बात के 16वीं सदी के प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बानी मार्टिन लूथर खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे के बारे में हमें यूं बयान करते हैं कि यीशु मसीह, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह दाऊद का बेटा होने की हसीयत से इसराइल की बादशाहत को बहाल करता है, जबकि इब्राहिम का बेटा होने की हसीयत से खुदा की बादशाहत पूरी दुनिया में लाता है। आमीन।